ओम शांति, ओम शांति। वेलकम टू दिस पैनल डिस्कशन इन दिस ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस ऑफ रीडिस्कवरिंग लाइफ। वेल फ्रेंड्स, ये जो पैनल डिस्कशन है उसका थीम रखा है वर्क लाइफ बैलेंस। बेसिकली हम लोग सभी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ उसमें कैसे बैलेंस लाएंगे, दैट थिंग वी वुड लाइक टू हैव डिलीब्रेशन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। दिस इज ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू द इश्यूज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। हम सभी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हैं, लेकिन जब पर्सनल प्रायोरिटीज होता है, कैसे हम पर्सनल लाइफ को पीछे हट जाते हैं, पर्सनल लाइफ को सक्सेसफुली डील नहीं कर पाते हैं, तो वी लैंड इन डिफरेंट क्राइसिस। तो आज हम इस सेशन में इस पर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहेगा, आप सभी भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए वी हैव डिफरेंट पैनलिस्ट, आई इनवाइट आवर डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट मिस्टर जीसी काटियार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेस्टर्न आंसर बेसिन ONGC बदगरा। सर प्लीज कम ओवर टू डायस। मिस्टर कमल मुखर्जी फ्रॉम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। मिस्टर हरि कश्यप, मैनेजमेंट कंसल्टेंट फ्रॉम USA। डॉक्टर सतीश गुप्ता इज डायरेक्टर ऑफ ट्रॉमा सेंटर एंड वेरी गुड एक्सपर्ट ऑन हेल्थ साइंस। मिस्टर आर निशामूर्ति, रजिस्ट्रार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फ्रॉम भोपाल। प्लीज गिव ए बिग हैंड। And Miss Ambika Pandit, she is from a different field, that is journalism, assistant editor, Times of India, New Delhi. Okay, friends, हम सभी session start करेंगे work-life balance। इस इंस्टीट्यूशन में एक चीज सिखाया जाता है कि जब बैलेंस रहेगा लाइफ में ब्लिस आएगा, जय आएगा। तो बैलेंस लीड्स टू ब्लिस। तो हाउ वी कैन एक्सपीरियंस दैट ब्लिस, कुछ पल के लिए हम उस सुप्रीम साइंटिस्ट परमात्मा को याद करेंगे और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स रिक्वेस्ट करूंगा कि आवर पैनलिस्ट बी फैसिलिटेटेड बाय बुके एंड बैजेस. Our esteemed chairperson, Mr. G.C. Katiyar sir, please give big hand. Dr. Satish Gupta, Director of Trauma Center, Abu Road. Ms. Ambika Pandit, from Times of India. Mr. Kamal Mukherjee sir from Southeastern Coalfields, Korba. Mr. R. Nishamurthy from Bhopal. May I request our chairperson to start, permit to start the session. With your kind consent, we'll first start with in all panelists deliberating on this topic for 7 to 8 minutes, 10 minutes like that. Then we'll have open to public discussion. Thank you, sir. Well, Mr. Kamal Mukherjee is a, I can say, is a workaholic person, very much addicted to work. Am I right, sir? Your biodata shows like that. You have been contributing in different work area from 1977 and presently working as General Manager, Excavation, Central Excavation Training Institute, Gebra. It's near Korba in Chhattisgarh. You have a very distinguished career in different fields and has been recipient of several awards. And moreover, as an engineer, you have been also doing research work in different fields, like hydraulic systems, and has been rewarded for this, his contributions. So, sir, we would like to know from you, kaise work ka pressure or personal life, personal family ka pressure, work priorities, family priorities, kaise aap balance karte, yeah, sometimes some experience you might have, where you are, you must have thought of applying different approach to deal with the situation. So from your experience and from your learnings, you can share and we will learn from your experience. Mukherjee.
नमस्कार. अभी जैसा आपने कहा कि मैं ऑल अलोंग वर्किंग फील्ड में ज्यादा रहा, लेकिन सच तो यह है कि अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ या जिसे आजकल लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल कोटेंट अगर नहीं है तो वर्क में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो मनस्थिति है, आप जो सोचते हैं उसमें कंट्रोल होना चाहिए. और कंट्रोल वर्क से नहीं आता, कंट्रोल आध्यात्म से आता है और मैं आध्यात्म से काफी जुड़ा हुआ हूं। मैंने तो पढ़ा भी है, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ये सारे के सारे आध्यात्म से जुड़े हैं। पहले मुझे लगता था कि ये जो पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कलाम हो या विश्वेश्वरैया हो, ये सारे के सारे आध्यात्म से जुड़े थे और यही वजह है कि ये अपने न्यूट्रल पोजीशन में आ जाया करते थे। और यही खूबी थी कि जब भी वर्क का प्रेशर आता था तो बड़े खूबी से बैलेंस कर लेते थे। और ये जैसा कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज हैव बिगिन विद द एंड योर इन योर माइंड, अगर एंड को आप पहले से सोच लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग भी फिक्स हो जाता है। अक्सर हाँ काम करते वक्त हम एंड नहीं सोचते और शुरू कर देते हैं तो एंड कहीं और चला जाता है और फिर दुख का वही कारण, जो दो मुख्य कारण होते हैं कि जो चाहा था वो ना हुआ और जो हुआ वो मैंने नहीं चाहा था, इस जक्स्टा पोजिशन में लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद फिर वही आपाधापी गलतियां हो जाती हैं हमसे और एक के बाद एक टेंशन। और चूंकि स्पिरिचुअलिज्म में नहीं जाते हैं, नहीं जुड़ते हैं हम लोग, तो ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। यही इसका एक वजह था।
थैंक यू सर। आपने जो फोकस रखा है कि मेरा एंड क्या है, व्हाट इज माय एंड, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, इफ वी कीप ऑब्जेक्टिव इन आवर फोकस वील हैव बैलेंस इन लाइफ। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर साहब इज अ वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, डेली वर्किंग 16 आवर्स इन ट्रॉमा सेंटर एंड डिफरेंट असाइनमेंट, स्टिल एबल टू मेंटेन स्पिरिचुअलिटी इन पर्सनल लाइफ। डॉक्टर साहब का लाइफ को हम देखते हैं, हम खुद इंस्पायर होते हैं कि डेली विदाउट फेल मॉर्निंग मेडिटेशन अटेंड करते हैं। मॉर्निंग में सुबह जो 6:30 7 o'clock हम लोग का स्पिरिचुअल विजडम का क्लास होता है उसको कभी मिस नहीं करते हैं और उनका रूटीन, डेली रूटीन, वो हम सभी को इंस्पायर करता है। बेसिकली डॉक्टर साहब इज ए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट। ही हैड डिस्टिंग्विश्ड कैरियर इन मेडिकल फील्ड। मैंने उनका लाइफ से एक चीज सीखा था, उन्होंने एक बार बताया था कि हाउ कॉमन मैन, गरीब से गरीब आदमी जब हार्ट पेशेंट बन जाता है तो उसको जब सर्जरी करना पड़ता है हाउ मच इट हैज बिकम कॉस्टली फॉर हिम एंड वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उन्हीं को हाउ टू एड्रेस देयर इश्यूज उन्होंने अल्टरनेट वे सोचा, एक्सप्लोर किया, तो उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन 6,000 कार्डियक रिलेटेड पेशेंट्स दे हैव बीन ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। जोर से ताली बजाइए, क्योंकि जो अल्टरनेट सिस्टम इंक्लूड होता है उन्होंने जो इन्वेंट किया है दैट इज लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। विद दैट प्रोसेस एवरी ईयर ही हैज स्टार्टेड ट्रीटिंग पेशेंट्स हियर इटसेल्फ। जो लोग का एंजिना ब्लॉकेड मिलता है ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं, यहां आते हैं फॉर सम डेज, कपल ऑफ डेज दे स्टे हियर एंड दे गेट रिलीव्ड, दे गो बैक विथ स्माइल ऑन देयर फेस। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उनको ही हैज बीन रिवॉर्डेड, अवार्डेड। एंड बेसिकली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हिज एक्सलेंसी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he was awarded him lifetime achievement award for this exemplary work, and also by UN for excellence in medicine. तो डॉक्टर साहब, हम सभी आपसे ये सुनना चाहेंगे कैसे मेडिसिन मेडिकल फील्ड का प्रेशर को और पर्सनल लाइफ का प्रेशर को कैसे बैलेंस रखते हैं, और क्या टिप्स हम सबके लिए चाहिए जो कि हमारा डेली रूटीन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट विल डील विथ फ्यूचर पॉसिबल हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. डॉक्टर साहब,
ओम शांति. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हर मनुष्य, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल डिजीजेस. अगर किसी भी सिटी में हम सर्वे करें एडल्ट्स का, तो देखने में आता है 100 लोगों को 200 बॉडी की बीमारियां. मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब एवरेज हर एक को 2 बीमारियां हैं. और मन की बीमारियों के बारे में जाएं तो हर एक को 6 बीमारियां, तो एवरेज सभी को है मन की बीमारियां. तो हर आदमी आज पीड़ित है. यही मैं जब दिल्ली में एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहा था, उस समय हमारे पास पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक से, और उनका हम एंजियोग्राफी करके उनकी एंजियोप्लास्टी, उनकी जो ब्लॉक था उसको फिक्स कर देते थे, और उसके बाद वो पेशेंट दोबारा, क्योंकि ये बीमारी पहले 60-70 साल की उम्र में आती थी, तो बाद में उन दिनों ये बीमारी 35-40 साल की उम्र में आनी शुरू हुई. पहले सिर्फ अमीरों को आती थी, उसके बाद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी आने लगी, और अभी तो 20-25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक्स आते हैं. लगभग 14-15% लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं आज एडल्ट्स में भारत में, और भारत वर्ल्ड लीडर है हार्ट की बीमारी में. उसी समय फिर वो दोबारा से, जब उनकी 6 महीने में दोबारा से आर्टरी फिर ब्लॉक, स्टेंट वापस ब्लॉक हो जाते, तो कई पेशेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, हमने जो पहला एंजियोप्लास्टी 6 महीने पहले कराया, वो हमने उस समय जब आपने हमें कहा तो हमें अपना घर बेचना पड़ा, घर बेच के हमने एंजियोप्लास्टी कराया, पत्नी के गहने बेचने पड़े, बच्चों की पढ़ाई हमें उसमें बीच में गैप देना पड़ा, इतना पैसा हमारा खर्च हुआ. और अभी 6 महीने के बाद आप कहते हैं, 3 महीने के बाद आप कहते हैं कि फिर दोबारा से आप एंजियोप्लास्टी करा लो या बाईपास करा लो, अभी हम क्या बेचें. तो इस तरह के थॉट्स जो मुझे मिलते थे, ऐसी इंटरेक्शंस लोगों से मिलती थी, तो मुझे बहुत पेन होती थी अंदर. और तब मैंने ऐसा कार्य सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं 1986 से ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन मैंने सीखा, और तब से मैं फिर राजयोग मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करता था. और तब से मैंने सुबह 4 बजे का मेडिटेशन, मुरली जिसे मुरली कहते हैं, 7 से 8 मुरली, और शाम को सोने के पहले ऑडिट करना डे को, मैंने कभी बंद नहीं किया. रेगुलर कहीं मैं चाहे बाहर हूं, देश में हूं, देश के बाहर हूं, ये मैंने हमेशा कभी मिस नहीं किया, प्लेन में हूं चाहे ट्रेन में हूं, हमेशा इसको मेंटेन किया, 4 बजे का मेडिटेशन और मुरली. तो मैं आपके सामने आज वो बात रख रहा हूं जिससे कि आपको पता लगे कि कैसे हम, ये मैं हार्ट के जहां की बीमारी की बात बताऊं आपको, वो दोबारा से ब्लॉक हो जाते हैं अगर हमने एक स्टेंट अगर लगा दिया या बाईपास कर दिया, और उस ब्लॉक को हमने वो ब्लॉक हुआ क्यों, हमने ये पाया इस रिसर्च में. हमने 1998 से शुरू किया रिसर्च ये प्रोग्राम. मैंने अप्रैल 95 में यहां शिफ्ट किया, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट रिजाइन करके मैं यहां शिफ्ट किया रिसर्च करने के लिए. और फिर जब मैंने आज हमने रिसर्च की है डीआरडीओ के साथ मिलकर की, डॉक्टर कलाम के साथ मिलकर रिसर्च की थी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये हम रिसर्च की, तो हमने ये पाया कि हर ब्लॉक के पीछे हमारे मेंटल थिंकिंग पैटर्न्स हैं, सोचने के ढंग हैं. किसी को एक ही आर्टरी में एक ही जगह ब्लॉक है, किसी को 5 ब्लॉक है, किसी को 8 ब्लॉक है, किसी को 10 ब्लॉक है. ऐसे पेशेंट्स जिनके बहुत लंबे लंबे ब्लॉक्स, तो उन ब्लॉक्स के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि हमने पेशेंट को साइकोलॉजी भी स्टडी किया, उसको फिजियोलॉजी उसकी स्टडी की, उसकी ईईजी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, और सब लोग एंजियोग्राफी करा करके आते थे, और 1 साल या 2 साल के बाद दोबारा से उनकी एंजियोग्राफी होती थी. तो हमें पता लगा कौन सा ब्लॉक किस कारण से है, और वो किनके ब्लॉक्स खुले और क्यों खुले, क्या उनके साइकोलॉजी में परिवर्तन आया, क्या ईईजी में परिवर्तन आया, क्या उनके टेंशन वाले हार्मोन्स में परिवर्तन आया. तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर पाए कि हर ब्लॉक के पीछे कौन से सोचने का ढंग है जिससे वो आर्टरी वहां से उस एरिया की आर्टरी की दीवार डैमेज होती है और वहीं पर आर्टरी ब्लॉक होती है। अगर आप एंजियोप्लास्टी कर दें किंतु अपने सोचने के ढंग को ना बदलें तो उस जगह वापस ब्लॉक आ जाता है, 3 महीने में 6 महीने में 1 साल में 2 साल में। कितना हमेशा आदमी कुछ तो अपने को बदल लेता है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलते, उनके ब्लॉक्स बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। इसलिए बाईपास सिर्फ टाइम पास हो जाता है, एंजियोप्लास्टी भी टाइम पास हो जाती है। तो जब हमने इस पेशेंट यहाँ पे अपने ग्रुप्स को बुलाना शुरू किया माउंट आबू में, पहले माउंट आबू में फिर शांतिवन में बुलाना शुरू किया, और फिर जो है हमने आज तक हम लोग 6500 से भी ज्यादा पेशेंट प्रोग्राम में आ चुके हैं जो एंजियोग्राफी करा करके, और उसमें हमने बड़ा क्लियरली कर लिया कि जो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक इस कारण से, ये ब्लॉक इसका इस तरह सोचने से, उसके साथ खान पान का परिवर्तन, उसके साथ इन चीजों का परिवर्तन करने से फिर ब्लॉक निकल जाता है। अगर पेशेंट अपने आप को बदल लेता है, वो थॉट पैटर्न को चेंज कर लेता है मेडिटेशन से, तो उनका वो ठीक हो जाता है। और इसमें हम एक सिस्टम डेवलप किया हमने, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। दुनिया की हेल्थ केयर सिर्फ 1 डायमेंशनल है, सिर्फ फिजिकल डायमेंशन को, हम सिर्फ बॉडी को ट्रीट करते हैं, किंतु यहां पर हमने स्पिरिचुअल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन को ट्रीट किया। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहां पर हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन्स का सेंटर, उसका जो ब्रेन है दोनों ब्रेन्स का, राइट और लेफ्ट ब्रेन का, वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी है, एक घड़ी है, बायोलॉजिकल घड़ी लगी हुई है। उस घड़ी में नियत है कि किस समय में सोना है, किस समय में उठना है, किस समय में मेडिटेशन के लिए बेस्ट है, किस समय हमें वॉकिंग के लिए बेस्ट है, किस समय हमारे वर्क के लिए बेस्ट है, किस समय नाश्ता के लिए बेस्ट है, कौन सा समय लंच के लिए बेस्ट है, कौन सा समय डिनर के लिए बेस्ट है। अगर आप उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो आपका जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, आपके यहां एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, वो जीवन संगीत बन जाता है। जैसे आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, 3 ग्लैंड्स यहां पर हैं, उसमें 4 से 5 बजे के बीच में हार्मोन निकलते हैं, लगभग 18 हार्मोन निकलते हैं। अगर आप 4 से 5 के बीच में आधा घंटा मेडिटेशन कर लें और उसमें आनंद की अनुभूति कर लें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में टिक जाते हैं, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है, ब्लिस की अनुभूति होती है, और उस एक्सटेसी में आपके वो 18 हार्मोन्स हार्मनी में निकल आते हैं, बैलेंस में निकल आते हैं। अगर वो 18 हार्मोन्स एक बार बैलेंस में निकल गए सुबह, तो सारा दिन अगले 24 घंटे में आपकी जो भी डिजीजेज है, फिजिकल या मेंटल, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट डिजीज है, कुछ भी आपको एक्जिमा है, अस्थमा है, जो भी, वो 24 घंटे में कम हो जाएंगे। अगर आपने सुबह का मेडिटेशन मिस कर दिया तो क्या होगा, आपको ये सब बीमारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि लगभग ऐसे 5 से लेकर 20 बार ऐसी किक्स वापस दिन में आती हैं, वो हार्मोन्स के रिलीज होता है, और जैसी पहली किक होती है सुबह, हार्मोनल किक होती है, वो 24 घंटे में फिर नेक्स्ट उसी पैटर्न में निकलेगी। अगर आप उस समय सो रहे हैं 4 से 5 के बीच में, तो क्या होता है कि उसमें आप यूजली ड्रीम्स जो आप देख रहे होते हैं वो फियरफुल ड्रीम्स होते हैं, टेरिफाइड ड्रीम्स होते हैं, डरावने सपने होते हैं, और वो सपने जब आप देख रहे होते हैं तो टेंशन वाले हार्मोन तो उस समय सोते सोते भी निकलेंगे, किंतु उसमें टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे और खुशी वाले हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन वो कम निकलेंगे, तो बीमारियां आपकी अगले 24 घंटे में बढ़ जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये बहुत पुरानी मैक्सिम है, ठीक बात है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, लेट टू बेड, लेट टू राइज, क्या होता है उससे, सब लोग बीमार, सब लोग नाखुश, सब कुछ होते हुए भी नाखुश है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इंसान को ये ऑप्शनल नहीं है कि सुबह उठना है नहीं उठना है, इट इज ए मस्ट टू गेट अप अर्ली, एंड बेस्ट टाइम टू गेट अप इज 4 AM। उठो, मुंह हाथ धो, ब्रश करके, और अपने को कहीं भी सोफे पे आराम से बैठ जाइए, अपने को आत्मा समझ के रियलाइज करिए हु एम आई, जो आपको बताया गया, अपने को परमात्मा पिता को याद करें, और वो एनर्जी, सातों एनर्जी वो आप परमात्मा से लें, और सातों एनर्जी जैसे आएंगी आपके अंदर आत्मा चार्ज हो जाएगी, और उससे वो हार्मोनल बैलेंस, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद जो आपके अंदर डेवलप होगा, उससे वो हार्मोन एकदम बैलेंस में निकलाएंगे। ये एनर्जी अब यहां आ गई, अब ये एनर्जी बॉडी की सेल्स में कैसे जाए, हमारी बॉडी में लगभग 80 ट्रिलियन सेल्स हैं, 80,000 बिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी, उससे बनी है। हर सेल में एनर्जी, शांति, प्रेम, खुशी की उसको आवश्यकता, आनंद की आवश्यकता है, शक्तियों की आवश्यकता है, वो कैसे जाएगी, जो कुछ सुबह उठने के आधे घंटे बाद से हमारी बॉडी, हमारी एड्रिनल ग्लैंड नीचे जो किडनी के ऊपर होती है, उसमें से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आधे घंटे बाद निकलना शुरू हो जाता है और सुबह 8 बजे उसकी पीक होती है। तो सुबह से लेकर के 8 बजे तक जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ भावनाएं आपके अंदर पैदा होती है, इमोशंस आपके अंदर पैदा होती हैं, जो कुछ मेमोरीज आप इमर्ज करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है कि वो आपकी कौन सी कितना हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन रिलीज होगा। अगर वो आपने नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव कोई फीलिंग में आ गए, कोई नेगेटिव बात को याद कर लिया 8 बजे तक उठने के बाद से, तो क्या होगा, वो कॉर्टिसोल हार्मोन इतना ज्यादा निकल आएगा आपका कि सारा दिन आपको अपने आप जल्दी चिंता, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन अपने आप होता रहेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर आप एक बार कोई सुबह पॉइजन ले लें गलती से, तो सारा दिन आपको उल्टी अपने आप लगती रहती है, आपको करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से आप क्या करें, 8 बजे तक चुप रहें और अपने 100 मन जो है, मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम टीम कहते हैं इंग्लिश में, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, अपनी टीम को पॉजिटिव रखें। और ये जो मुरली जो मैंने बताई, जो आपको यहां भी बताएंगे, ये जो परमात्मा महावाक्य को हम मुरली कहते हैं, ये 100% पॉजिटिव टीम है, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ, और उसमें 100% पॉजिटिव मेमोरीज हैं, 100% पॉजिटिव इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं एंड थॉट्स हैं, उससे क्रिएट होते हैं। तो सुबह से हम क्या करते हैं, उन जो परमात्मा महावाक्य है उनको बार बार मन में सोचते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, चर्निंग करते रहते हैं उसकी, और 7 से 8 यहां पर मुरली सुनाई जाती है हर सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी के हर सेंटर में वो मुरली सुनाई जाती है। तो वो अगर हम सुन लेते हैं, अगर 8 बजे तक हमारे हार्मोन्स, फिर वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है 8 बजे तक, अगर वो बैलेंस में हो गया तो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवर्स कर जाती है, एक एक सेल में शांति, प्यार, खुशी, आनंद वो भर जाता है। तो ये हमारा एक तरह का, हमारा ये अपने लिए चार्जिंग सिस्टम है 8 बजे तक का, मैंने ये ना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखें आप, तो सारा दिन आपको शांति से, प्यार से, खुशी से काम होता रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब जहां भी आप घर में रहते हैं, बाहर काम करते हैं, आप कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे अपने वातावरण को, अपने घर के वातावरण को, या अपने जहां ऑफिस है आपका, या आपका क्लिनिक है, या आपका जो भी रिसर्च स्टेशन जहां पे आप कार्य करते हैं, उसको भी आप पीसफुल, लवफुल, हैप्पी बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आप मुरली सुनने के बाद, सर्दियों में मुरली सुनने के बाद और गर्मियों में मुरली सुनने के पहले, अगर आप 45 मिनट सुबह वॉक कर लें, उसे मैं कहा करता हूं शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध माना क्लीन माइंड से, प्योर माइंड से, और सातों एनर्जी का अभ्यास करते हुए, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में बोलते हुए नहीं, टॉकिंग एंड वॉकिंग शुड नॉट बी मिक्स्ड, उसमें आप सुबह सूर्य उदय के बाद 45 मिनट सैर कर लें, तो क्या होगा, वो एनर्जी फिर आपकी बॉडी से बाहर ट्रेवल करना शुरू करती है, आपकी सेल्स के शांति, प्यार, खुशी आपके आसपास ऑरा के रूप में बाहर निकलना शुरू करती है। तो 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज अ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बींग, पर बातें करते हुए नहीं, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए, उसी योग में ही आप वॉकिंग करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक माना ऐसा भोजन जो सात्विक गुणों को बढ़ा, सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, जैसे अंकुरित है, दलिया है, सब्जी रोटी है, फल है, दूध है ना, ये वाला भोजन, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, वो खाएं, चबा चबा के खाएं, चुप चुप रह के खाएं, बातें करते हुए ना खाएं। ज्यादातर आजकल क्या करते हैं, वॉक ईटिंग एंड टॉकिंग इज मिक्स्ड, वो गलत है, ये आप करें। तो इसके बाद सारा दिन आप बीच बीच में अटेंशन रखें, नेगेटिव थॉट्स को आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें जहां तक हो सके, और फिर सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें। ऑडिट माना जो भी सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी गलतियां आपसे हुई हैं, हमारे कुछ हैबिट्स होती हैं जिसके जिस कारण हम कुछ गलतियां करते हैं, माना हमें गुस्से को गुस्सा कर लिया, कोई रिएक्शन कहीं कर लिया, कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी ने हमसे मिसबिहेव किया, हमने उसके साथ वापस मिसबिहेव कर दिया, तो वो जो बातें आई उसको आप नोट कर लें, ऑडिट कर लें अपने आप को सोने के पहले, और अपने आप को माफ कर दें, और कुछ अच्छा किया तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं, है ना, पैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो क्या होगा, और सोने के और अपने आप को टाइम पे सो जाएं, क्योंकि हमारी जो क्लॉक कहती है 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 की जो नींद है उस नींद में आपको 120 मिनट में से 110 मिनट आपको गहरी नींद आती है, 10 मिनट ही सपने वाली नींद आती है, और 12 से 2 वाली नींद में आपको 30 मिनट सपने वाली नींद आती है, और 90 मिनट गहरी नींद आती है, और 2 से 4 की नींद में 50 मिनट सपने वाले नींद आती है, और ये 4 बजे तक के सपने आपको याद नहीं रहते बिकॉज ये लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं। अगर 4 से 6 आप सोते हैं तो उसमें 90 मिनट आपको कैसे सपने आएंगे, और वो डरावने सपने हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आएंगे जो उठते ही आपको याद आ जाएंगे। तो इसलिए 4 से 6 कभी ना सोएं, 4 बजे उठ जाएं। तो अगर आप 10 से 4, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप विच इज इम्पोर्टेंट। तो 4 से 6 अगर आप 10 से 4 सो जाइए, और इस तरह से आप अगर करते हैं, इसमें मैंने देखा कि लोगों के ब्लॉक्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एस्थमा, एक्जिमा, GERD सभी तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, और दवाइयां बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते रहे हैं उनकी वो डॉक्टर्स के पास 15-16 साल तक नहीं गए हैं, कभी भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके बाद अगर इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो ये अगर आप वर्क और लाइफ का बैलेंस रखेंगे तो आप हेल्दी भी जीवन रहेगा आपका, और हैप्पी भी रहेगा, और आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओम शांति।
डॉक्टर साहब, जनरल परसेप्शन इज दैट व्हेन यू वर्क इन प्रेशर, व्हेन देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स, different type of expectations, how to handle them with spiritual wisdom, क्योंकि वही अनबैलेंस शुरू हो जाते हैं। कंसाइंस कुछ कहता है, ऊपर से एक्सपेक्टेशन और कुछ रहता है, तो उस टाइम कैसे बैलेंस रखें, क्या विजडम अप्लाई करें कि हम अपनी इनर कंसाइंस को पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करें, और जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन है, उसको भी हैंडल करें, स्मूथली हैंडल करें।
मैं आपको सिर्फ इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला दे देता हूं, आपने पहले सुना भी होगा शायद, स्ट्रेस तनाव जिसे कहते हैं, उसका एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाई कोपिंग एबिलिटी, जिसे हम इनर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। Whenever this ratio becomes more than 1, then you feel stressed. अगर आप जो प्रेशर्स हैं वो आपके इंटरनल प्रेशर्स हो सकते हैं, आपके अंदर के प्रेशर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, मन में आपको बहुत आप सेंसिटिव हैं, आप बहुत टाइप ए नेचर के पर्सन हैं, बहुत हर चीज में परफेक्शन आपको चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, आपको बहुत एंजाइटी होती है, आप बहुत इमोशनल हैं, है ना, ये आपकी नेचर हो सकती है जिसको आप एक दिन में बदल नहीं सकते, या आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या एसिडिटी, कुछ हेडेक, माइग्रेन है जिसको आप एक दिन, एस्थमा है, आप बदल नहीं सकते, ये आपका इंटरनल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर फैमिली का प्रेशर है, परिवार में आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, भाई बहन है, वो आपका प्रेशर, वो आपको लिए एक रिक्वायरमेंट है, उनके कुछ आपके प्रति एक्सपेक्टेशन है, वो भी एक प्रेशर है। आपका जहां आप काम करते हैं वर्क प्रेशर, वहां वर्क प्रेशर आपको है, आपके लीगल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी आपके प्रेशर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत लंबा आपको जाना पड़ता है ऑफिस में, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है आपको ऑफिस पहुंचते, तो वो प्रेशर्स हो सकते हैं। आपका बॉस से बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता, या आपके कुलीग्स आपको कॉपरेट नहीं करते, वो प्रेशर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते तुरंत, किंतु एक चीज आपके हाथ में है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ आपके हाथ में है, और इनर स्ट्रेंथ आपको मॉडिफाई करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कि मेडिटेशन दिस इनर स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाई एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, अपने को बार बार अपने आप को रिवाइज करो, रियलाइज करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं रियलिटी मेरी है क्या। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है, वो हम उसको बचाने की कोशिश करते, मर जाता है, उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को, आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन, टेक द बॉडी। तो मैं कौन हूं, ये मैं ये वाली फोर्स हूं, लाइफ फोर्स हूं, ये मैं डिवाइन एनर्जी हूं, ये अपने आप को बार बार रियलाइज करें। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स फादर ऑफ ऑल द सोल्स, वो सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम सोल है, सातों एनर्जी का ओशियन है, पावर हाउस है वो मेरा फादर। और सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरा उससे हर संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन सर्जन, बच्चा, जो भी संबंध आप सोच सकते हैं वो संबंध है। और डी फॉर ड्रामा, इस संसार रूपी नाटक में हम आत्मा एक्टर्स हैं और परमात्मा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, अर्थात किसने मुझे कुछ कहा, किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने मुझे गाली दी, मेरा धोखा दिया, नुकसान हुआ, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार हुआ। आज सारी दुनिया इसी बात में फंसी है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आज मेरे साथ आज तक जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। और 90% थॉट्स हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स में बीत जाते हैं और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज में बीत जाते हैं। तो फिर हम जब ABCD लगाते हैं तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अब समझ आ गई, ज्ञान माना समझ आ गई, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब आप इस तरह ABCD करते बार बार रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, आपका मन और बुद्धि प्योर होती जाएगी, इंटेलेक्ट प्योर होती जाएगी, मन में शांति माना पॉजिटिव विचार आते जाएंगे, आपके मन में सबके प्रति सेल्फलेस लव बढ़ता जाएगा, उससे आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगी, हैप्पीनेस से आपके अंदर ब्लिस बढ़ेगा, और आपके अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ती जाएगी, पावर ऑफ डिस्क्रिशन बढ़ती जाएगी, पावर ऑफ जजमेंट बढ़ती जाएगी, और पावर ऑफ कोऑपरेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, फिर जितना भी प्रेशर आए आपके जीवन में आए, इनर आए या एक्सटर्नल आए, आप उसको इजीली कोप कर पाएंगे। हमारा यही तरीका है कि हम यहां पर रहते हुए सारे कार्य करते हुए कभी शायद हमें कभी भी हमको स्ट्रेस नहीं होती है, कभी हमें गुस्सा नहीं आता है। हम यहां पर रह के अपने लाइफ को क्या बना लेते हैं, बेगमपुर का बादशाह। आपने बेगमपुर देखा है क्या? बेगमपुर देखा है कभी? नहीं देखा। बेगम जहां कोई गम ना हो, तो हम बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, हमारा घर भी और हमारी लाइफ। ओम शाह।
थैंक यू डॉक्टर साहब। वी हैव लिसन्ड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, नाउ इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें लॉट ऑफ प्रेशर्स है, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। मिस्टर आर नरसिम्हमूर्ति इज प्रेजेंटली रजिस्ट्रार ऑफ जेएल यूनिवर्सिटी भोपाल। बेसिकली आपने एमटेक किया है, PhD भी किया है, सो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन बैकग्राउंड मिक्स्ड है। सर, आपने एक्सपीरियंस किए होंगे कि वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ दोनों में कितना बैलेंस का जरूरत है, और उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं सो दैट यू मेंटेन ए बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ।
ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू रेस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स। इन फैक्ट आई अज्यूम दैट लाइफ इटसेल्फ इज एन एजुकेटर, एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज एन एजुकेटर। ऑल ऑफ अस सिंस लास्ट टू डेज आई एम वंडरिंग, जो टॉपिक हमको दिया है साहु साहब ने, वर्क लाइफ बैलेंस। हम लोग इतना लकी नहीं है डॉक्टर साहब जैसे माउंट अबू में 30 साल से प्योर एनवायरमेंट एवरी डे, यू कैन अफोर्ड टू वेक अप एट 4 o'clock, डू ऑल दी मेडिटेशंस, दैट काइंड ऑफ लग्जरी आई डिडंट हैव, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर एज अ स्मॉल फार्मर सन। आई एम दी फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम माय विलेज टू वेंट ऑन टू डू माय एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर। ऑल ऑफ माय विलेज पीपल अप्रिशिएटेड हाउ कम अ स्मॉल फार्मर सन कैन गो अप टू दैट लेवल। I have to travel 15 kilometers by cycle. My father cannot afford, he cannot think over how to educate his son by paying the fees. I was lucky to get my scholarship during my 92 time, 2000 rupees that time. Of course, I didn't bother my parents. I'm one of the lucky people. Then some of my friends poked me. In fact, stressed me. I was content. Life itself, आप लोग जो हमारे पास जो है उसमें खुश रहे तो everything is okay. Before that, I'll slightly explain the topic. If I consider my own panel members itself, 50% of the members are from government service. I think there won't be much work life stresses created. If I'm wrong, it is my personal opinion. There will be a lot of, end of the day, maybe DGM has to report to the general manager, sir, aaj ka productivity itna hai. Maybe my sister, Times of India, she has to report aajkal breaking news, shocking news, whatever the news, to the editor. Otherwise, she'll be always in stress. Likewise, Dr. Saab also, you have to get up anytime, untimely calls from the patients. So there is no lot of stresses involved. Similarly, my facilitator, Sahu Saab, he himself is a DGM in a steel plant. Myself, I also worked as a senior manager in a copper smelter plant. We know the technical difficulties or occupational, professional hazards. So you cannot just switch off your mobiles or go to your home, sleep. So you have to think always. Thanks to, I should say thanks, or it is our unfortunate thing nowadays, technology. It is having both its own positiveness as well as negativeness. Now my university has given me a mobile number to track me. Arey bhai, kya kar raha hai? Achcha, aaj result ka kya ho gaya? Admission ka kitna hai? Aaj ka fee collection kitna hai? Tell me the outputs. So I'm always under stress. In fact, main pehle din bhi bola tha aap log ke samne, main bhag ke aaya hu idhar. Main khud ek work life balance ke liye rasta dhoond raha tha. Kaise? So I'm not supposed to aap log ke samne main kuch share nahi karna, matlab I'm sharing your problems. Hopefully. So how many of you, I just would like to know, how many of you are in government sector? Please raise your hands. So let us say, you are all lucky. Subah ek sister ne bola, ye sab aapka balance sheet ke hisab se. Probably, aap log ne pichle janam mein bahut kuch achcha kiya hoga, isliye aap log ka government ka naukri mil gaya. That is my personal opinion, please don't take it otherwise. Then rest. So I could say 50-50. Private may, so our main topic should be how to balance work life in the private sector. Sabhi maulik log ek jaisa nahi hai. So I request the Brahma Kumaris to educate the employers to organize such kind of programs to my boss, I mean my maliks, my owners. Please change them automatically. Jo bhi hamara problem hai, heart problem hai, blood pressure hai, सारा दूर हो जाएगा. मुझे तो 7 दिन काम करना पड़ा. ऑफकोर्स आई एम एलिजिबल टू गेट माई CL और EL. मैं और एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं जो कल हम लोग डिस्कस किया था. अमेरिका, US एंड स्वीडन, आई थिंक वन मोर कंट्री, जापान, दे हैव एवरीथिंग विद अस, विद देम, बट स्टिल दे डोंट हैव एनीथिंग. सुसाइड रेट इज मच. वाई? Because they want to have more and more. So they have to work more and more. Their output should be more and more. So there is never ending to get that goal. So because of that, they are suffering. But please check it out. US is the only country, probably, I don't know the current data, they are not giving medical leaves. I think India is a poor country or a developing country, gives all the employees, especially in government, you can get maternity leaves, medical leaves, ELs, CLs, even other some special allowances. Probably the government sector colleagues can share much more. But the developed country like US, they are not giving this kind of facilities. Probably this could be one of the reasons for the such kind of outputs, unbalancedness. Then I have only few 10 commandments. Probably Dr. Saab ne mera kaam ko thoda easy kar diya. Health, of course. If I'm not planning my job, hum log jo hamara plan, either it is a sweeper, subah aata hai, either hum log dekh rahe, sweep karta hai, wo bhi apna kaam ko plan karna padta hai. Kaise? Please observe the silence for 2 minutes. Yeah, sorry, let me come to that, the title of our discussion. Main Sahu Saab se ye puchna cha raha tha. Yesterday somebody was commenting जो मंगलयान में हम लोग जीवन ढूंढ रहे हैं, इट इज वेरी इजी टू कमेंट, बट कितना हार्ड वर्क वो साइंटिस्ट लोग ने पुट किया. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द इंटरव्यूज गिवन बाय डॉक्टर राधाकृष्णन. आई थिंक लास्ट वीक ही रिटायर्ड. ही डजंट हैव वर्क लाइफ बैलेंस. हिज ओनली एम इज टू पुट दी दैट रॉकेट सिस्टम इन टू दी ऑर्बिट. इट इज नॉट 8 to 8 और 8-9 to 5 जॉब. ही वॉज टेलिंग, आई लिटरली got shocked. He was working for months without even knowing what is going on in his house, continuously isolated. Likewise hamara jawan log hai borders mein kaam karte hai, un log ke liye work life balance, although government is giving a better facilities, un log to 3-3 mahina 4-4 mahina kaam karte hai, but hum log 5 din kaam kar liya, 5 days a week normally the general employees. My suggestion is it should be more specific, like medical area, educational field, in the journalism also it would be more appropriate. Similarly, so many other examples you can think of. So we are just discussing in general how to balance the work life. So my 10 commandments, I think hum sab janta hai, if we properly do the planning, half the work is done. Everybody should know whether it is a small work or a big work. Proper planning hum log kar liya to, so there is no stress at all. Jo sweeper se leke aap coordinator se leke dadi ji ke leke sab, everybody is having their own plans, execute it. You should have a proper team. So who is responsible? Abhi mera under hai, all the faculties are working in my university, all the non-teaching staff, around 250 members are working. So as a leader, mujhe malum hona chahiye how to extract work. Especially I'm talking with respect to private industry. So majority, 70% of our Indian economy is purely run on service oriented private industries. So my appropriate discussion is oriented towards
Samarthi that. Samarthi sir, I beg to disagree with you one point.
Yeah.
That public sectors, as you have told just now about the experiment of Mangalayan, it was done by government sector only.
Yeah.
So we cannot just go on telling that government sector people are not contributing or people contributing.
I'm not saying that.
Yeah.
It is my personal opinion.
Yeah, yeah.
You may beg.
I beg
deeper.
To disagree with you.
So that,
that you have brilliantly given the example of Mangalayan. And
I'm appreciating. Yeah.
ISRO and those public sector organizations, they are the temples of democracy as being told by Jawaharlal Nehru. So they are in their capacity, they are also contributing to the growth of our country, growth of our industry.
Sarzab, I never disagreed with your output. You are much more in a balanced, already your life is balanced. So there is no stress at all. That is my. So my simplest 10 commandments are, so our planning should be perfect. Half of our aadha kaam to ho jayega. Then structure. फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग अभी भी पुराना कन्वेंशनल सिस्टम लेके चल रहे हैं. रोज आने के अटेंडेंस सिस्टम, अटेंडेंस में साइन करना और बायोमेट्रिक सिस्टम में पंच करना. सो दीज सिस्टम गवर्नमेंट ऑलरेडी मोदी साहब ने कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं. सेम काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव टू अडॉप्ट. फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट आई वांट टू से इज स्ट्रक्चर. यू शुड हैव ऑलवेज, आई एम नॉट ऑलवेज इंडिस्पेंसिबल. मैं एक जॉब छोड़ के चला गया तो और कोई नहीं है एक काम करने के लिए. ऐसे नहीं होना चाहिए सिस्टम पे, एक बैकअप होना चाहिए. सो ऑलवेज डेवलप है सिस्टम विथ बैकअप्स. प्लान बी, समबडी शुड टेक केयर. माय डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार शुड नो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली. सो वी हैव टू शेयर, वी हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू द यंगर कोलीग्स एज वेल. सो हमारा ऊपर एज अ लीडर, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, नॉट एज अ बॉस, not as a manager, you should be as a leader. The third one is time management. Everything should be time bound. That again comes by experience only. Hum sab jante hai how to manage the time. Even to start the our session, we should be more cautious. Even time allotted to me, I should not disturb. Probably Katya sir is waiting, so I should not, I have to in a position to share my views in a given time. And also training. Maybe I did my M.Tech in 93, but nowadays M.Tech is different. So I have to upgrade. That's why we are coming here to get from other people's, what are their experiences. So I'm keeping on upgrading. I'm learning every time. I'm not just stopping. Arre ho gaya bhai, main PhD kar liya, main doctor ban gaya hu, sara sab kuch kar liya hu. No, life is a learning. Every moment is a learning by experience. And the fifth point is, like yesterday, sister ne bola, you have to tap yourself, appreciate yourself, give a small reward to yourself. Okay, I achieved this target. I'm rewarding myself by patting back, maybe giving a small, go to a restaurant, have a food with your colleagues, enjoy yourself. So that way, work-life balance can be maintained. And also, leaves. Go on weekends to places like Abu or wherever you like. Forget about your work. Purely concentrate. Give time to your children, wife, parents, other colleagues. So that whatever way you want to enjoy. So if we do this, probably, and stay healthy. Dr. Saab ne humko badhiya bataya. Always. That is why we are here. Most of the topics already been covered by our Brahma Kumari's sisters. So how to stay healthy? If you do yoga, get up at 4 o'clock. Do that Raja Yoga, if not at 6:30, if not at evening. Even other people like Ramdev, they're all sharing their, whatever the possible way of reducing the, or keeping ourselves as a healthy. And always keep positiveness, that balance sheet morning we discussed. Don't bother about what others say. There will be, life is always full of leg pulling, gossiping, talking others, rumors. Most of the time goes like that. 8 hours, 5 hours, we waste ourselves in this only. So the productivity we try to achieve at the last hour of the day, showing that, mera boss ko main bata raha hu sir, main to rukke kaam karta hu. End of the day, annual confidential report, ACR. So as a boss, Katia saab, 200 log ko kaise yaad rakhega? So whatever it is written on the file, based on that he gives increments. So everybody looking for that kind of increments only, falsified increments. And the last two things, work is worship. In olden days, humko pehle job chahiye tha. Okay, once you are given naukri mil gaya, uske baad usko permanent karne ke liye koshish karte hai. Okay, now I have become a permanent employee of that organization. Now I want to grow up. I want to be a senior manager, vice president. Now my contentments, my expectations are keep on rising. Likewise, morning ne kisi ne bola tha, ek aadmi ne roadside mein baitha tha, chup chaps, enjoy kar raha tha, kisi ne bola, arre aap aam kyun nahi bechte, that story. He is contented by sitting idly, whatever he is having, he is enjoying. So likewise, we keep on increasing our requirements, so lot of stress comes into play. So at the end of the pinnacle, if you have studied the management principles, theory of needs, Maslow's theory of needs, there is a triangle keeps going up and up. To reach that pinnacle, you have to go out and learn something from the spiritual gurus, spirituality. That is why we are all over here to learn something, how to keep ourselves positive always. Keep our balance sheet in good condition by loving our job. And also, we have to love our life. Whatever I'm having, my job, I'm happy with that. If that situation we adopt, I think most of the work-life balance will be managed. Thank you. Thank you, Arunji, for giving me an opportunity. It is my personal opinion not to hurt anybody's thing. Okay, if at all, if I did that, please excuse me. Thank you.
No, it's all right. Actually, Nishtamurthy Sahib, you have shared your own experiences based on your personal insights. But friends of here also working from different organizations, maybe it is public sector, maybe it is central government, they are also contributing. And that's the reason why organizations like coal sector, power sector, they are prospering and contributing to nation's growth. Okay, just mujhe example, real story you can say share karne ke liye, इंस्पिरेशन मिल रहा है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। एक पर्सनल लाइफ में उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किए थे, जब वो डीआरडीओ में इन्वॉल्व थे, उनका एक ऑफिस प्रोजेक्ट लीडर, उनका बेटा का बर्थडे था, तो उन्होंने उस दिन प्लान किया था कि थोड़ा ऑफिस का काम से ब्रेक लेके घर पे पहुंचेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फैमिली को उन्होंने कमिटमेंट दिया था, फैमिली वाज अवेटिंग नेचुरली। तो ऐसा सिचुएशन आया वर्क फील्ड में कि उनको जल्दी किया और लेट रुकना पड़ा, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स आया उनको लेट रुकना पड़ा। तब जब वो रिटर्न जाते हैं घर पे, फैमिली मेंबर्स वो सोच के जाते हैं कि आज मुझे फैमिली मेंबर्स से ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा कि इट विल बी रियली हॉरिबल फॉर मी। लेकिन जब वो घर में लैंड करते हैं, देखते फैमिली मेंबर्स आर वेरी हैप्पी, दे आर इन ए वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। क्या रीजन हो सकता है? यस, उस दिन खुद अब्दुल कलाम जी खुद जाकर उनका एब्सेंस को मेकअप किए। उन्होंने जाके उनका बर्थडे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, उनका साथ दिए और उनका हैप्पीनेस को कम नहीं होने दिए। तो ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस में, जैसे निशामूर्ति साहब बोल रहे थे, वी लीडर्स, हम सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है। हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिफरेंट फील्ड से इनवाइट करेंगे, दैट इज फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। कहते हैं कि इट्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी जैसे हमारा कंट्री है, इसको स्ट्रांग करने के लिए जर्नलिज्म, प्रेस, फ्री मीडिया, दैट प्लेज अ बिग रोल। एंड मिस अंबिका पंडित इज प्रेजेंटली असिस्टेंट एडिटर ऑफ प्रेस्टिजियस टाइम्स ऑफ इंडिया। लास्ट 14 साल इस फील्ड में वो जुड़े हैं। इसका पहले उन्होंने पायनियर, मिड डे, एशियन एज ऐसे डिफरेंट रेपुटेड न्यूज़पेपर्स से इन्वॉल्व थे। सी हैज हेल्ड मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक सी ऑल्सो प्रैक्टिशनर ऑफ राजयोग मेडिटेशन। जैसा जर्नलिज्म फील्ड है जहां डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन सबको मीट करना पड़ता है, सबका डिफरेंट प्रायोरिटीज रहता है, हो सकता है एडिटर का प्रायोरिटी, हो सकता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का प्रायोरिटीज दैट मे बी डिफरेंट, तो वो सबको लेके आप कैसे डील करते हैं, कैसे बैलेंस रखते हैं, थोड़ा सा हम सबको एजुकेट कराएंगे।
ओम शांति। मैंने जब ये टॉपिक देखा वर्क लाइफ बैलेंस, तो मुझे एकदम से लगा कि जरूर, क्योंकि मैं ज्ञान में चलती हूं तो बाबा को रेफर करूंगी, मुझे लगा कि जरूर इसमें कुछ वजह है कि इस टॉपिक पे मुझे बोलने को कहा गया। क्योंकि 2009 में जब मैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे गई थी पहली बार, तो यही सवाल मेरे माइंड में था कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। तब सिर्फ 8 साल हुए थे मुझे जर्नलिज्म में, लेकिन 8 साल में ही ये समझ आ गया था कि जिसको मैं सक्सेस डिफाइन कर रही हूं वो शायद सक्सेस नहीं है। और जिस तरह से प्रेशर्स और डेडलाइंस, जिस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मैं जर्नलिज्म में ढूंढते हुए आई थी, वो शायद उन डेडलाइंस, उन वर्क प्रेशर्स में कहीं खोता सा जा रहा है। लेकिन जर्नलिज्म इज माय फर्स्ट लव, तो अगर जर्नलिज्म में भी रहना है, उसको एंजॉय भी करना है, उस उन डेडलाइंस की एड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं, एक्साइटमेंट जो आप जब स्टोरी लिखते हैं, जब आपकी स्टोरी पब्लिश होती है, उसका जो असर होता है, जिस तरह के इम्पैक्ट्स आते हैं, तो ये कैसे किया जाए? योग, कई जगह मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, रिट्रीट्स आजकल, यू नो, ऑल यंग जनरेशन वी ऑल गो फॉर रिट्रीट्स. तो एक रिट्रीट में चले गए, बहुत अच्छा लगा, वापस आए, फिर वही क्वेश्चंस. फिर लोगों ने कहा कि कुछ बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, तो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ डाली, वो भी बहुत इंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा. उसके बाद भी कुछ रेस्टलेसनेस थी जिसको मैं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी कि है क्या प्रॉब्लम. बट आई रियलाइज आई वॉज नॉट हैप्पी. आई मीन आई वॉज डूइंग वेल, आई वॉज इंजॉइंग माई वर्क, बट देर वॉज समथिंग मिसिंग एंड नेचुरली देर वॉज नो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, जिसको आप कह रहे हैं कि ऑड आवर्स हैं, यू पुटिंग इन वर्क आवर्स, यू लाइक योर वर्क, बट देन यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स. तब मुझे याद आया, और ये मैं इसलिए बता रही हूं कि कैसे हम स्पिरिचुअल कनेक्ट में जब हम एक दूसरे को बात करते हैं, कैसे हम जुड़ते हैं. जब मेरी पहली असाइनमेंट थी 2001 में, तो मैं क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से सब शुरू करते हैं, और जो पहली कॉल आपको करने को कहा जाता है वो होता है SI प्रेस, सब इंस्पेक्टर प्रेस होता है, जो शाम को लेट नाइट जो न्यूज ब्रेक्स होते हैं वो बताता है. तो मैंने जब कॉल किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वही एक इरिटेटिंग सा कांस्टेबल होगा जो कुछ बता देगा, बट बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आवाज में उन्होंने मुझसे बात की. और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा और फिर बताया कि आप कभी ब्रह्मा कुमारीज में आइए. तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने ब्रह्म कुमारी का कभी नाम भी नहीं सुना था, और मेरे को लगा ये ऐसा ही प्रेस मुझे मेडिटेशन की बात कैसे कर रहा है. तो मैंने उन्हें कहा हाँ ठीक है आप, उन्होंने कहा आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए. तो मैंने उन्हें दे दिया. उसके बाद नेचुरली एक डेढ़ साल बाद मैं क्राइम रिपोर्टिंग से मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स. आज अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स अर्बन पॉवर्टी पे लिखती हूँ. उसके बाद वो भाई, संजीव भाई, भाई है उनका नाम, वो मुझे ब्रह्म कुमारीज की ईमेल, मेरा याहू मेल उससे ब्लॉक हो गया. उन्होंने रेगुलरिटी से 8 साल, अभी भी भेजते हैं, अब तो खैर इंटरेक्शन ज्यादा है. और 2009 में तब मैंने कभी भी कोई ब्रह्म कुमारीज का ना सेशन अटेंड किया, ना कभी आई, ना मेरे माइंड में भी नहीं था, मेल आती रहती थी बस, तो मुझे पता होता था कि ये मेल मेरे स्टॉक में आ रही है. 2009 में जब ये सब चल रहा था कि मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रही हूँ, योगा रिट्रीट में जा रही हूँ, ये सब हो रहा था, तो एक दिन सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम चल रहा था और कोई फ्रेंड्स बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कितना अच्छा बोलती हैं. वैसे ही कैजुअली बात हुई. जैसे ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी, तो मुझे वो ईमेल याद आए जो 8 साल से मेरी मेल में रोज आ रहे थे. पता नहीं कैसे ये स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है. उनका नंबर मेरे फोन में स्टोर था 8 साल बाद, और मैंने उनको फटाफट डायल करा और मैंने कहा संजीव जी मैं अंबिका बोल रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है. मैंने कहा सॉरी, मुझे लगा वो कहेंगे मैं तो 8 साल से आपको मेल भेज रहा हूँ, आप आई नहीं, यू नो, जो एक यूजुअल होता है कि सो आई वॉज वेरी अपोलोजेटिक कि आपने मुझे मेल्स भेजे. और मैंने कहते नहीं कोई बात नहीं बताइए. मैंने कहा मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा इनका सुन के, पर मुझे सेंटर पे जाना है. तो उन्होंने कहा आपके घर के पास का कोई सेंटर बताते हैं. मैंने कहा ठीक है आप बताइएगा. तो उन्होंने कहा मैं आपको कल बताता हूँ. मैं मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकली, पता नहीं इंटरनली समथिंग वॉज टेलिंग मी दैट आई हैव टू गो टूडे एंड आई कैनॉट वेट टू गो टू अ सेंटर नियर माई हाउस. सो आई कॉल्ड हिम अगेन एंड आई सेड मैं रस्ते में हूँ ऑफिस के, यहाँ कोई आसपास सेंटर है, मैं पहले वहां चली जाती हूँ. तो उन्होंने एक मिनट में चेक करा, उन्होंने कहा हाँ लोधी रोड का सेंटर है, आप जाएंगी? मैंने कहा हाँ. और मैं 15 मिनट में सेंटर के बाहर खड़ी हूँ और उसके बाद सेंटर के अंदर हूँ. पीयूष भाई गिरजा बहन वहां मुझे मिले और बस उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस है. मतलब मैं जितना ज्यादा सिंप्लीफाई होती गई लाइफ, जितना ज्यादा माइंड सिंप्लीफाई होता गया कि आज, मतलब अभी मैं कहूंगी आई एम अ बिगिनर, मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी लेवल पे पहुंची हूं या मैंने अपनी सारी एंग्जाइटीज को कॉन्कर कर लिया या सारे फियर्स को कॉन्कर कर लिया है. लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस जो हमारा मेन सब्जेक्ट जिसपे हम बात कर रहे हैं वो सालों में नहीं बल्कि हफ्तों में स्ट्रीमलाइन होने लग गया, क्योंकि वहां पर मुझे अपने पे मेहनत करना सिखाया गया, मुझे ये बताया गया कि सब कुछ अंदर ही चल रहा है और जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना आप सक्षम बनेंगे। तो सक्षम बनने के लिए मुझे बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड करना नहीं सिखाया गया कि दीदी पे डिपेंड करो या दादी जी पे डिपेंड करो या किसी और पे डिपेंड करो। वहां पर कांस्टेंट वर्क जो 7 दिन के कोर्स में हुआ और उसके बाद हुआ और अभी तक चल रहा है वो है अपने को सक्षम करने का, योग से, ज्ञान से, मुरली से, हर तरीके से। एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी क्योंकि उसी साल का बताती हूँ, क्योंकि अब तो रोज ही होते हैं एक्सपीरियंसेस, तो उस समय का बताना ज्यादा बेटर है क्योंकि वो 2-3 महीने में हुआ था। पहला जो मेरा टेस्ट आया, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा सुन सुन के बातें, अच्छी अच्छी बातें करना बताना। एक ऐसी असाइनमेंट थी जो मैं हैंडल कर रही थी पिछले 4 साल से, बहुत ही, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट, तो उसको मैं करती आ रही थी 5 साल से। और जब वो एक्चुअली डेवलपमेंट हुई तो कॉम्पिटिशन है तो नेचुरली कुछ लोगों को फेवर किया गया एंड मेरे को उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा साइडलाइन किया गया। अब मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे फाइट बैक करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सडनली मुझे उस समय कॉन्फ्लिक्ट का मैंने सामना किया कि स्पिरिचुअलिटी में तो ये कहा जाता है जो होता है आपके साथ आपके कर्मों का हिसाब किताब है, आप ऐसे मत करिए, ये मत करिए, अब मैं क्या करूं। तो यहां पर सेंटर के इंटरैक्शंस और भाइयों बहनों दीदी की हेल्प होती है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे सामना और समाना दोनों की शक्ति की इम्पोर्टेंस बताई गई कि आप रिएक्ट करें लेकिन तब रिएक्ट करें जब जरूरी है, और कुछ चीजें आपको अपने अंदर समानी होंगी। समाने का मतलब ये नहीं है कि आप, मैंने दीदी से पूछा मैं हेल्पलेस हो गई, मतलब अगर मैं पीछे स्टेप बैक कर जाऊंगी तो आई विल बी कंसिडर्ड टू बी वीक, यू नो इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड। पर मुझे कहा गया उतने ही कॉन्फिडेंस से कि ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टेप बैक करिए और देखिए क्या होता है। तो वो जब मैंने किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो दूसरों से कम्पीट कर रही थी इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। अगर मैं जैसे ही स्टेप बैक किया तो मुझे और चीजें नजर आने लगी जिन पे और लोग काम नहीं कर रहे थे। और 24 दिसंबर की शाम को एक छोटी सी प्रेस रिलीज आई, बहुत सारी प्रेस रिलीज आती हैं जो डस्टबिन में चली जाती हैं शाम तक। उस प्रेस रिलीज में लिखा था कि एक टेंट लगा हुआ है पूसा रोड राउंड अबाउट, जो दिल्ली से फेमिलियर हैं वो जानते होंगे, और वहां पे डेमोलिशन हो गया। 250 फैमिलीज जिसमें 100 बच्चे हैं वो बेघर हो गए हैं और बारिश हो रही है, ठंड है, और ये एक 2 लाइन का हमारे पास मैसेज आया। उस दिन मेरे पास काम भी नहीं था और मैं थोड़ा इसी वजह से जद्दोजहद में थी कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेवा ही करते हैं, क्योंकि ये आप जैसे जैसे आप ज्ञान में चलते हैं ये चीजें आपके साथ साथ चलने लगती हैं, कि आपको भाव ये नहीं होगा कि आप अचानक से कॉपी निकालेंगे और आप सोचेंगे अब मैं देखूं इसमें कौन सी शक्ति का मैं इस्तेमाल करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है मेरा कर्म है, मैं अभी चलती हूं। रात को 9 बजे मैंने ऑफिस से गाड़ी ली और फोटोग्राफर को लिया और हम दोनों पूसा रोड राउंड अबाउट पहुंच गए और हम शॉक हो गए, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट शायद मैं नहीं जाती अगर मैं उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को कवर कर रही होती। और मैं वहां गई और मैंने वापस आके वो स्टोरी लिखी रात में, अपने एडिटर को दिखाई तो उन्होंने कहा अंबिका स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन देखते हैं गरीबों के बारे में उनका मतलब ये नहीं था कि छपेगी नहीं, लेकिन इतनी प्रोमिनेंस से शायद ना छपे, उनको ये लगा जिस तरह का हो सकता है। आप मानेंगे नहीं, अगले दिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया की page 1 लीड स्टोरी छपी, लीड स्टोरी विथ फोटोग्राफ। और उसके बाद पहली जनवरी को, उसके बाद जब वो लीड स्टोरी छपी तो बहुत लोगों ने मुझे कहा अरे तुमने क्या कर दिया, ये स्टोरी page 1 कैसे छप गई। मैंने कहा पता नहीं, मतलब मुझे तो आदत थी पॉलिटिक्स page 1 छप रहा है, मिनिस्ट्री के डेवलपमेंट्स page 1 छप रहे हैं, लेकिन कभी आदत नहीं थी कि मेरी होमलेस की कोई स्टोरी page 1 छपेगी। अगले दिन मैंने और स्टोरीज की, चार दिन हमने सीरीज करी, गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं करा. गवर्नमेंट कहती रही हम करेंगे करेंगे. 2 जनवरी को सबसे पहले हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके उस इशू पे पीआईएल कॉन्स्टिट्यूट की. 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि 24 आवर्स के अंदर पूरी दिल्ली में नाइट शेल्टर्स होने चाहिए. और आज 4 साल के बाद, मतलब हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको फिर एक कैंपेन बनाया जो 6 साल से चल रही है. ओवर 100 स्टोरीज होमलेसनेस पे लिखी जा चुकी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएसी ने उसको नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंडर अर्बन शेल्टर प्लान के नाम से एक नेशनल स्कीम के अंडर 2012-13 के बजट में लॉन्च किया. तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया. उस दिन उस समय मुझे लग रहा था कि ओहो मैंने इतना बड़ा इवेंट कवर नहीं किया, और मेरे लिए ये इवेंट ऑलरेडी तैयार था जहां से मैं तभी जा सकी क्योंकि मैंने अपने माइंड को ओपन अप किया. अगर मैं इमोशनल लड़ाई में लगी रहती कि मैं इसको आगे करूं और उसको पीछे करूं और इसको धक्का मारूं और अपने एडिटर्स को कुछ बोलूं या किसी और को कुछ बोलूं, उसकी जगह जब मैंने अपना रोल आइडेंटिफाई किया तो रास्ता मिला, अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिली. लेकिन जो शायद पहले जब मुझे रिकॉग्निशन मिलती थी तो एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड हो जाती थी, अब जब रिकॉग्निशन मिली तो एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आई क्योंकि ये लगा कि हमने परमात्मा के काम में निमित्त बनकर अपना कुछ रोल प्ले किया. बहुत छोटा सा रोल प्ले किया लेकिन उस रोल को हम प्ले कर पाए. तो यही वर्क लाइफ बैलेंस है. वर्क लाइफ का एक और उदाहरण देती हूँ, वो कल का उदाहरण है. जब परसों मैं यहां से आ रही थी, क्योंकि वर्क की बात की तो लाइफ की भी बात होनी बहुत जरूरी है, मैंने छुट्टी ली क्योंकि मुझे यहां आना ही आना था. बस मन में था कि आना ही आना है, इलेक्शंस आ रहे हैं, नॉर्मली इस समय छुट्टी नहीं मिलती और मुझे तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि एज अ लीड कॉरेस्पॉन्डेंट दिल्ली में ऑन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग. तो वही होता है, बाबा ने बुलाना था तो मेरे एडिटर ने भी बड़ी आराम से छुट्टी दे दी, छुट्टी भी अप्लाई हो गई, आने का टाइम हुआ. नॉर्मली एटीट्यूड क्या होता है, आई एम ऑन लीव, आई एम अनअवेलेबल, मैं अब काम नहीं करूंगी, यू नो. लेकिन ये भी एक मैंने अपने अंदर बदलाव देखा कि आप छुट्टी पे रह के भी बहुत थक सकते हैं अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप उल्टी बातें ही सोच रहे हैं, लेकिन छुट्टी पर रह के भी आप काम कर सकते हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं फील कर सकते अगर आप उसमें भी आप अपने कर्म को ढूंढें. तो मंडे को क्या हुआ, मैंने बहुत 2-3 महीने बाद छुट्टी ली होगी तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं तो अब बिल्कुल मुरली पढ़ते हुए जाऊंगी और कुछ और योग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी. कोई एक डिवेलपमेंट हो गई पॉलिटिकल 2 बजे जो मुझे कन्वे हुई. पहले मैंने सोचा मैं तो छुट्टी पे हूं, वाई शुड आई बॉदर. लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं जिस जगह जा रही हूं वहां मैं सेल्फिश होने के लिए थोड़ी ना जा रही हूं. अगर मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है तो मेरे को अपने एडिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए. इट विल बी वेरी सेल्फिश टू क्लोज माई आईज एंड लीव. सो आई कॉल्ड माई एडिटर एंड इन्फॉर्म्ड हिम. सो ही सेड वेल देयर इज नोबडी हु कैन फॉलो दिस अप, बट ही डिड नॉट आस्क मी टू डू इट. ही वॉज लिविंग अप टू दैट छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट दैट शी इज ऑन लीव. So I said, ठीक है देखते हैं, I'll talk to some other journalist who can do it. I spoke to one journalist, he said, I'm on leave, I cannot do it. Much more senior to me. So I said, okay. I put the phone down. Normally, 7-8 साल पहले मैं बॉस को फोन करती और ये कहती, देखो वो कितना बेकार है, वो तो काम नहीं कर रहा, मैं आपको बता रही हूँ. But I didn't do any of that. मैंने कहीं मन में सोचा, मेरी 8 बजे की ट्रेन है, अभी मेरे पास 3 घंटे हैं. I can arrange for this information and I can write the analysis and send it. So I called my boss and I said, don't worry, I'll send you the copy before I board the train. मेरे घर में थोड़ा सा resentment हो गया इसको लेकर क्योंकि उनको लगा ट्रेन ना मिस हो जाए, पैकिंग नहीं हुई है, अब क्या होगा, ये क्या होगा. एनी वे काम मैंने शुरू किया. 6:30 मैंने टैक्सी बुक करी हुई थी, 6:45 हो गए. मैंने अपना कंप्यूटर बंद करा, थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि 15 मिनट तो लेट चली रही हूं, चाहे 1 घंटा अभी मेरे पास है. मैंने कहा ठीक है बाबा, अब आप देख लेना, मैंने काम कर लिया है अपना, अब मैं निकल रही हूं. हम वहां से निकले, 15 मिनट में मैं सारी सड़कें, मैं सरिता विहार में रहती हूं अगर आप लोग जानते हो, पोलो के पास में है दिल्ली में, वहां से हम 15 मिनट में पहुंच गए ओबेरॉय होटल। मैं बड़ी खुश कि बाबा ने तो खाली सड़क दे दी है, तो सड़क हमेशा भरी होती है। फ्लाईओवर पे पहुंचते ही हमने देखा कनॉट प्लेस एंड इंडिया गेट वॉज शट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली बिकॉज 1 जनवरी होने की वजह से सारे लोग सेलिब्रेट करने वहां पहुंच गए और पुलिस के लिए हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। अब मेरी ट्रेन है 8 बजे और कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पार करे बिना आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, एक ही सड़क रह जाती है आईटीओ। तब मैंने एक भाई जो ट्रेन में जा रहे थे उनको फोन करा और मैंने कहा कि मैं तो अभी यहां हूं, तो उन्होंने कहा आप आईटीओ से ही आ रहे हो पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप मेट्रो ले लो। मैंने कहा नहीं मैं इधर से ही आ रही हूं। हम वहां से निकलते 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 7:45 पे मैं आईटीओ पे खड़ी हूं, 7:55 की ट्रेन है और उन भाई ने मुझे कहा कि आप ना बहन यहां से छोड़ दो, ट्रेन तो आप किसी हाल नहीं ले सकते क्योंकि आप अजमेरी गेट साइड पे आओगे, 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म आने में टाइम लगेगा, दूसरा ये भी रोड क्राउडेड होता है, आप दिल्ली के एंड चले जाइए। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे इसी ट्रेन में जाना है, आप ये सब मत कहिए, आप इस समय योग लगाइए कि किसी तरह ट्रेन रुक जाए। उन्होंने कहा राजधानी तो रुक ही नहीं सकती। उनको भी थोड़ा सा ये लगा कि ये कैसी बातें कर रही है, मेरे को बोल रही है योग लगाओ, और वो टैक्सी ड्राइवर भी देख रहा है कि ये मैडम मतलब क्या बोल रही है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं लगा तो रहा हूं पर आप पहुंच नहीं पाएंगी, आप दिल्ली के एंड जाएं तो ज्यादा बेटर। मैंने कहा मैं वहां तो जा ही नहीं सकती और बाबा को आप बोलो कि मुझे तो आना ही है, इसी ट्रेन में आना है कैसे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बड़ा फोन रख दिया। उसके बाद हम लोग वहां पहुंचे, अजमेरी गेट पे उतरे 7:55 की ट्रेन है और वहां जब पहुंचे तो मैंने उन भाई को फिर फोन किया, मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं हो सकता ट्रेन रुक जाए। उन्होंने कहा नहीं ट्रेन तो ऑन टाइम है बहन, अब मुझे नहीं पता आप कैसे आओगे पर देख लो जो भी है। तो मैं वहां से उतरी, कूली को मैंने कहा भैया तुम बैग उठाओ और भागो। ठीक है, हमने भागना शुरू किया, हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर थे और वहां अनाउंस हो गया राजधानी प्रस्थान कर रही है, आपको हैप्पी जर्नी और ये सब हो गया। और मेरे को लगा अब तो वापस जाना चाहिए, मैं ना उस समय कहूं बाबा किसी तरह ट्रेन रोक दो, और मैं दौड़ती जा रही हूं और सीढ़ियां नीचे उतरे, आप मानेंगे नहीं 7:55 पे ट्रेन जाने का टाइम था और हम लोग आके रुके उसी डब्बे में जिस डब्बे में मुझे चढ़ना था, और ट्रेन के अंदर चढ़ने की जगह मैं बाहर खड़े होकर ट्रेन को देख रही हूं और कूली कह रहा है चढ़ जाइए आप। मैंने कहा ये ट्रेन है पक्का, कोई और ट्रेन तो नहीं है? कहता है मैडम यही ट्रेन है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप चढ़ जाओ, पैसे मत दो, बाद में दे देना पर आप चढ़ जाओ। हम अंदर चढ़े और ट्रेन चल पड़ी। जब हम अंदर गए और बैठे तो हमारे को आसपास वाले लोगों ने बताया कि हम 7:55 की अनाउंसमेंट के बाद सोच रहे हैं कि राजधानी तो कभी लेट ही नहीं होती, ये चली क्यों नहीं। और जो भाई थे उन्होंने कहा ट्रेन चली और फिर रुक गए। तो हमें 2 मिनट का टाइम अगर मिला, अगर इसको माने तो कोई कोइंसिडेंस कह सकता है, पर हमारे लिए ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो यही एक जर्नी है जो वर्क लाइफ बैलेंस कांस्टेंट जर्नी है, कांस्टेंट एफर्ट है, और हम सबको इसमें ज्वाइन करना चाहिए। ओम शांति।
मैं सिर्फ आपको 1 मिनट इसका कारण बता दूं, आपको जो उन्होंने बताया, जो अंबिका बहन ने बताया, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली हमारी बीटा रिदम होती है 15 से 30 हो सकती है 1 सेकंड में वेव्स, किंतु जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अल्फा थीटा और डेल्टा 2-3 पे पहुंच जाती है, थीटा एकदम आप टोटल उसमें रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसमें टोटल वर्ल्ड ड्रामा आपके साथ मूव करने लगता है और वो जो ड्राइवर है या जो कोई भी व्यक्ति है वो सर्कमस्टेंस को चेंज कर देता है। इसे कहते हैं इजी लाइफ। इजी लाइफ में ना बेसिकली बिजी और इजी जो है वो एक मेंटल फीलिंग है। जब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है 20, 25, 30, 35, 40 होती है तो आप बहुत बिजी महसूस करते हैं, कुछ काम नहीं करें तो भी आप बिजी महसूस, हमने बताया छुट्टी वाले दिन भी आप बहुत थकावट महसूस कर सकते हैं, किंतु आप मेडिटेशन करते तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्लो हो जाती है आप काम करते हुए बहुत इजी महसूस करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं किंतु बहुत इजी महसूस करते हैं, मतलब इतना रिलैक्स महसूस करते हैं आप सारा काम कर सकते हैं। प्लस आपके थॉट जो आपका ऑरा है इतना बढ़ जाता है, उस ऑरा के अंदर जो भी व्यक्ति होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, वातावरण परिवर्तन। इसी तरह से कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं हमारी मेडिकल लाइफ में भी होते हैं, बहुत सारी बातों घरों में भी होते हैं। तो ये सारा जितना आप मेडिटेशन करेंगे, इस तरह से लाइफ लीड करेंगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका वातावरण इतना बढ़िया हो जाएगा और जो आप चाहेंगे वही थॉट आपके मन में आएगा, जो समय पे काम होने वाला है वही थॉट आपके मन में आएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करें, मेरी रिक्वेस्ट एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको बता रहा हूँ। तो खाली मैं हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, टोटल लाइफ आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और जो मैंने वर्ड यूज किया बेगमपुर का बादशाह, तो आप सचमुच वैसी लाइफ लीड कर पाएंगे।
थैंक यू सिस्टर अंबिका। दीदी आपने जो शेयर किया रियली इट वॉज ऑब्जर्विंग और इट वॉज पर्सनल एक्सपीरियंस, हम सबके लिए इंस्पायरिंग भी है। जो आपने जो पॉइंट शेयर किया दैट इज द कोर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज फिलोसफी, कि हम अपने ऊपर फोकस करें, नॉट द सराउंडिंग, नॉट द सिचुएशन, बट इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन आवर सेल्फ देन द रियल बैलेंस बिगिन्स। मैं अभी इस पैनल डिस्कशन का चेयरपर्सन मिस्टर जी सी कटिया साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वेस्टर्न अंशो ऑफ ONGC, वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन पब्लिक सेक्टर। यू हैव डन BSc फ्रॉम BTech फ्रॉम BHU एंड MTech फ्रॉम IIT रुड़की, अराउंड 34 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन में। अभी आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए आपका जर्नी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। तो कटिया साहब आप हमें सबको शेयर करेंगे कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस, इतनी सीनियर पोस्ट में रहकर कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं, और व्हाट एवर इनसाइट्स यू हैव लर्न फ्रॉम टुडेज डिलीबरेशन काइंडली गिव योर लाइट ऑन दैट।
नमस्कार, ओम शांति। अभी आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को सुना, श्री कमाल मुखर्जी साहब, जिन्होंने यह कहा कि वर्क और लाइफ बैलेंस के लिए एक जो आध्यात्मिक कोशेंट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने यह बताया कि यदि आपका एक आध्यात्मिक झुकाव है तो होता क्या है कि आप अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड चीजों को परसीव कर पाते हैं। यदि आप देखें कि हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो बहुत होगा तो 100 साल होगा, और अधिक होगा तो शायद 140 हो जाए, लेकिन जब हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड देखते हैं तो हम जो भूतकाल में महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन से सीखते हैं, आज जो महान लोग हैं उनके जीवन से सोचते हैं, और साथ ही साथ हम प्रकृति से भी सीखना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कि प्रकृति जो है वो सुप्रीम इंजीनियर है, डॉक्टर है, और आप ये भी देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो कि शायद 3 खरब साल पहले शुरू हुआ यूनिसेलुलर लाइफ से लेके आज तक, जबकि मनुष्य जीवन जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विकसित जीवन है, आप देखेंगे कि समुद्र के आप डिस्कवरी में जीव जंतु देखते होंगे कैसे कैसे एक्सपर्ट हैं वो सर्वाइवल के लिए, आप देखते होंगे कि इंसेक्ट्स हैं जिनको जिस प्रकार के सर्वाइवल के लिए, जैसे आप कोई कीड़ा देखेंगे जिसका आकार बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसा है, कुछ कीड़े देखेंगे जिनके पंखों पे पत्तियों की तरह की रचना है और उसमें हरा रंग भी है, तो आप ये देखेंगे कि जो भी जीव इस धरती पर है वो अपने वातावरण के साथ एक उसका सामंजस्य है, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है। और यदि अचानक परिस्थितियां बदल जाएं और बहुत शीघ्र बदल जाएं और उसको समय ही ना मिले एडाप्टेशन का, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल रियलिटी। तो हम चूंकि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक कहना चाहिए कि इवॉल्व्ड प्राणी हैं, मनुष्य के स्तर पर आप देखेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इन तीन स्तरों पर है। जो कि आप देखेंगे कि जैसे अन्य प्राणी हैं उनमें बौद्धिकता है, डॉल्फिन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंट प्राणी, और वो मशीनें तक ऑपरेट करना आप उसको सिखा सकते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट है। और अन्य प्राणी आप देखेंगे उनमें संवेदनाएं हैं, उनमें इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लेवल पे क्या है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि शायद इवॉल्व होते होते इस स्टेज पर आ गई है जहां पर कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण हो गया है हमें और आगे ले जाने के लिए। तो ये तो बात हुई नेचर से सीखने की। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, आज हम बाबा को इतने आदर से, अभी आपने देखा कि अंबिका जी ने कितने उनको आदर से याद किया और उनकी शक्तियों के, ये जो शक्तियां हैं उन्होंने, जो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उनको कैसे आप केंद्रित करेंगे और उनको प्रयोग में ला सकते हैं जीवन में सफल बनने के लिए। और सफलता क्या है? सफलता का रहस्य ये है कि हम अपने जीवन को सामाजिक रूप से जितना उपयोगी बना सके वही सफलता है जीवन की। क्योंकि दो बाउंड्री कंडीशंस जीवन की बड़ी फिक्स है, ना हम कुछ लाए थे इस संसार में और ना ही कुछ लेके जाएंगे। और कबीरदास जी ने, आपको ध्यान होगा, एक कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसके माने क्या हुए कि आपके जो गोल्स हैं, जब आप अपने गोल्स को सामाजिक लक्ष्यों के साथ मिला देते हैं तब आपको अपने काम में थकावट महसूस नहीं होगी और उसी समय आपको सबसे अधिक कार्य क्षमता आपकी आ जाएगी। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताई और न्यासमूर्ति साहब ने भी बताई कि, या डॉक्टर साहब ने अभी जिस चीज को कहा कि ब्रेन जो है उसमें अगर हम ईईजी लें, उसका इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफ, तो आप देखेंगे कि उसमें अल्फा बीटा ये वेव्स आती हैं। तो जो अल्फा ब्रेन वेव्स हैं उनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है और उस समय आप जो है बहुत आनंद महसूस करते हैं, और बीटा वेव्स जिस समय ब्रेन में बनती हैं उस समय आप बड़ा चिड़चिड़ा, थका हुआ और ये सब महसूस करेंगे और आपकी शक्तियां जो हैं वो क्षीण हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं ओलंपिक में, जब वो 100 मीटर की रेस जिस समय एथलीट दौड़ रहा होता है वो दुनिया की और हर चीज भूल जाता है, और वो उस स्टेट में आया कैसे? अभ्यास से। वो लगातार उसने कई वर्षों बचपन से उसमें अभ्यास किया है, और उस समय जिस समय वो वास्तव में दौड़ रहा होता है उस समय वो पूरी दुनिया में भूल गया, और वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसको लोगों ने कहा है कि वो एक फ्लो की स्टेट होती है। फ्लो की स्टेट मतलब आप उस समय भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जिस समय आप किसी बहुत रुचकर काम में लगे हुए हैं तो आप खाना तक भूल जाते हैं। तो वो स्टेट जो है वो फ्लो की स्टेट है। अच्छा, अब जहां तक की स्ट्रेस की बात है, अब जैसे प्रेशर कुकर है, आप देखिए प्रेशर कुकर का काम है कि उसमें प्रेशर बनेगा और रिलीज होगा, बनेगा और रिलीज होगा, यही प्रेशर कुकर का काम है। तो जो हमारा हमारी जो बुद्धि है और जो हमारा मन है उसमें विचार आएंगे और विचारों के उत्पन्न होने से उसमें ऊर्जा भी लगेगी, क्योंकि सोचने में ऊर्जा लगती है। आप जानते हैं कंप्यूटर भी जो है वो एनर्जी को यूज करता है। तो विचार जब आएंगे तो नेचुरल है कि स्ट्रेस भी जनरेट होगा, लेकिन वो एक्यूमुलेट अगर हो जाता है तो वो फिर स्ट्रेस। अब जैसे प्रेशर कुकर का अगर प्रेशर रिलीज ना हो तो वो फट जाएगा और वो अपना जो काम है वो नहीं कर सकता। तो वो ना हो इसके लिए जो है हमें मेडिटेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, मेडिटेशन परम आवश्यक है। और जो अभी अंबिका जी ने बताया और जो कि नेसमूर्ति साहब ने भी बताया कि जीवन जैसे जैसे सिंपल होता जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्यों पर ज्यादा केंद्रित करते हैं। अभी मैं किसी को बता रहा था कि हमें जो है टेक्नोलॉजी का मास्टर होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी का स्लेव हो जाए। अब आप देखेंगे अभी कई बार यंग जनरेशन अपने लैपटॉप और मोबाइल में ऐसे खो जाते हैं और वो उन्होंने कान में म्यूजिक लगा ली और ऐसे खो जाते हैं कि ये ट्रेन आ रही है सामने से और वो ट्रेन नहीं सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, और ट्रेन के नीचे दब गए और जीवन गंवा बैठे। तो प्रश्न ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का मास्टर रहना है और स्लेव नहीं बनना है उसका। आपको कंट्रोल में रहना है, आपको ड्राइवर की सीट में रहना है। तो आप ड्राइवर की सीट में कैसे रहेंगे, जबकि आप स्वयं यह महसूस करेंगे कि हम, जैसे आपने सुना ना कि आत्मा की शक्तियां, और गीता में भी लिखा है कि इंद्रियां शरीर से इंद्रियां ज्यादा बलवान है, इंद्रियों से मन अधिक बलवान है, मन से बुद्धि अधिक बलवान है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत बलवान है वो आत्मा है। तो जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो उस समय क्या है कि आप अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड चले जाते हैं और जो आपकी फिजिकल लिमिटेशंस हैं उनके बियॉन्ड चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन शक्तियों को अपने अंदर महसूस कैसे किया जाए। आप देखेंगे कई बार हम अपने को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं और डिप्रेस महसूस करते हैं। उस डिप्रेशन और कमजोरी से आपको ऊपर आने का यही है कि जैसे आप यहां आए, आप एक गुरु की शरण में गए और उस गुरु ने आपको रास्ता दिखाया कि ये रास्ता है, इस पे आप चलिए। जैसे अभी नेसमूर्ति साहब ने कमांडमेंट्स दिए, इसी प्रकार से जैसे लॉर्ड क्राइस्ट ने कमांडमेंट्स दे दिए, आप देखेंगे लॉर्ड बुद्धा ने प्रसन्न रहने के लिए अष्ट मार्ग दे दिया। उन्होंने कहा कि आपको राइट एक्सरसाइज करनी है, राइट डाइट लेनी है, राइट विचार होने चाहिए, सही जीविका होनी चाहिए आपकी, यानी जो जीवन में प्रसन्न रहने के जो जो फार्मूले हैं वो उन्होंने दे दिए। तो आप देखेंगे कि अब चूंकि हम सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, कुछ गृहणियां हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जो है हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में हम कैसे अपने को स्वस्थ रखें, कैसे हम मन को प्रसन्न रखें, और जब मन प्रसन्न होगा तभी बुद्धि कंट्रोल में होगी और तभी आपको अपनी आत्मिक शक्तियों का आभास होगा। इसके लिए जो है गुरु, अभ्यास, और जैसे अब आप लोग जो भी यहाँ आए हुए हैं इतने बड़े शिविर में, और मैं तो यहाँ जीवन में पहली बार आया हूँ, और जैसा कि खुबालकर साहब ने कहा कि जब तक बाबा नहीं चाहते हैं तब तक यहाँ कोई नहीं आ पाता है, तो निश्चित रूप से जो है उन्होंने चाहा है तो मैं यहाँ हूँ। तो क्या है कि आपको गुरु की शरण में जाना बड़ा आवश्यक है, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मेडिटेशन, राइट डाइट, और इससे आपको हर प्रकार से लाभ होगा। और जैसे कृष्णामूर्ति साहब ने कहा कि जो बचपन की कठिनाइयां हैं या जो हमारे आम जीवन की कठिनाइयां हैं, दरअसल वो कठिनाइयां ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। जैसे जब सोना आग में तपता है तो वो खरा होता है, तो आप जब कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वो कठिनाइयां और उनसे प्राप्त होने वाला जो अनुभव है वही आपको बनाता है। हाँ, लेकिन वो कठिनाइयां ऐसी ना, देखिए सोना कभी भी आग में जल के जो है समाप्त नहीं होता है, वो और खरा हो जाता है। उसी प्रकार से ये कठिनाइयां आपको तपाकर और श्रेष्ठ बनाती हैं। तो इसके साथ ही मैं पुनः यह कहूंगा कि मैं अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज मैं आप सबके मध्य हूं और आपने इतने सुंदर विचार प्रस्तुत किए। और इसके साथ ही मैं पुनः धन्यवाद देता हूं बाबा जी को, जिन्होंने आज मुझे यहां बुलाया आपके समक्ष। और मेरे ख्याल से मुझे आपने सबने सुना कि जो है वो मुखर्जी साहब ने क्या कहा, अंबिका जी जो कि इतनी अभी यंग है लेकिन अनुभव के हिसाब से इतनी, मतलब शी कैरीज ओल्ड हेड ओवर यंग शोल्डर्स, डॉक्टर साहब ने आपको बताया और नेसमूर्ति साहब ने बताया। इस सब के लिए जो है मैं कहूंगा कि हमारा जीवन और एनरिच हो गया, और मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।
मुखर्जी साहब कुछ थैंक यू कटिया साहब, आपने हमारा जो पैनलिस्ट है सबका ओपिनियंस को एक सिंक्रोनाइज करके, सिंथेसाइज करके हम सबका सामने प्रस्तुत किया। और हम समझते मुखर्जी साहब कुछ शेयर करना चाहेंगे, फ्यू मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स।
हाँ जी, हेलो, अभी मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स रिजल्ट देते हैं, ये पूरा सही नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव एक्शन जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। उसका एग्जांपल जैसा वो साहू साहब ने बताया कि डॉक्टर कलाम जो है उसके घर गए और उसमें शामिल हुए, इट वॉज ए पॉजिटिव एक्शन अलॉन्ग विद द पॉजिटिव थॉट। अभी जो मैडम अंबिका पंडित, उनका भी देखिए पॉजिटिव थॉट था, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो छुट्टी में थी, ड्यूटी का काम उनका छूट रहा था, उनका कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा था, अल्टीमेटली उन्होंने पॉजिटिव एक्शन की ओर जब ध्यान दिया। ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब सक्सेस मिलती है, ये एक बात है। दूसरी, अभी जो कटियार साहब ने कहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, उन्होंने कहा कि आजकल का जमाना टैक्स सेवी है। हमारे जमाने में मॉनिटर हुआ करता था और हम लोग डरते थे मॉनिटर से, मगर आज का यह यंग जनरेशन है वो 24 घंटे अगर बोल दिया जाए तो मॉनिटर के सामने बैठा होगा, ठीक है। और उसका नतीजा ये होता, अब तो टेक्नोलॉजी और एडवांस कर गई, वो सारी चीज उन्होंने पाम में दे दिया। बड़े गर्व से हम साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने तो पामिंग टेक्नोलॉजी ले आया, लेकिन पामिंग टेक्नोलॉजी का देखिए इल्स क्या है कि आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार भी आता है तो बच्चा जो है वो मोबाइल में ही खोया रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस जिंदगी से मशहूर नहीं हो पाता, वो जिंदगी को नहीं देख पाता, जिंदगी की अच्छाइयों को नहीं देख पाता, वो सिर्फ मोबाइल में ही बिजी रहता है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इट शुड बी कंट्रोल्ड, उसका स्लेव नहीं बनना चाहिए। फिर उन्होंने बुद्धा के बारे में भी बताया, और बुद्धा ने बहुत सही कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि साहब आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट सेटिस्फैक्शन, तो बुद्धा ने कहा सबसे पहले तो आई को निकालो, बिकॉज आई ब्रिंग्स द ईगो। फिर उन्होंने कहा वॉन्ट को निकालो, बिकॉज वॉन्ट ब्रिंग्स डिजायर, ये दोनों को निकालो तो अल्टीमेटली इट विल बी ए सक्सेस। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू।
और गुरु का बताया उन्होंने कि गुरु के शरण में जाइए, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, आपने पेंसिल यूज किया होगा, पेंसिल अपने काम नहीं करता, पेंसिल सरेंडर करता है ओनर को, ओनर यूज करता है,
ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब पेंसिल में खराबी आती है तो उसको छीलता भी है, वो ठीक करता है, एरर को करेक्शन भी करता है, और उसके साथ जब उसके और गलतियां होती है तो मिटाने का भी प्रोविजन रहता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना, बाबा की शरण में जाना अल्टीमेट गोल है। थैंक यू।
ओम शांति। एक क्वेश्चन था ऑडियंस से, आप बीच में से, कि नींद के बारे में उन्होंने कहा कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो कि नींद कितनी करनी चाहिए। जैसे मैंने उसमें भी कहा कि नींद की क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पोर्टेंट। आप 12 घंटा अगर अल्फा स्लीप में सोते रहिए तो आपकी 12 घंटा भी आपके लिए कम है, आप थके महसूस करेंगे, किंतु अगर आप डेल्टा स्लीप में चले जाएं तो आपके लिए 4 घंटा नींद भी बहुत है। तो अगर इसलिए मैंने बताया, एक तो राइट टाइम पे सोना, अपनी क्लॉक के अनुसार सोना, जो आपको एक ऑडिट करने के बाद अगर आप सोते हैं तो 110 मिनट जो आपको गहरी नींद आती है वो 10 से 12 की नींद अगर आपने मिस कर दी तो आप 12 बजे से लेकर 8 बजे सोए तो भी आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो जहां तक हो सके अपनी नींद का टाइम 10 माना बस, अगर आप प्रॉपरली ऑडिट करके सो जाइए, और 6 घंटा की नींद बहुत काफी है आप अगर सही ढंग से सोते हैं तो। अपने आप को पूरा वेंटिलेट करके सोइए, ऑडिट करके सोइए, और फिर उसके बाद मैंने देखा हम लोग, मैं आपको अपनी लाइफ थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं 4 बजे हमेशा 3:30 बजे उठते हैं हम लोग, उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद 5 बजे से कई बार हमारी लाइफ शुरू हो जाती है। 5 बजे अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं और मुझे 5 बजे ही कॉल आनी शुरू हो जाती है, और 5 बजे कई बार हॉस्पिटल भागना पड़ता है, कई बार रात में ही भागना पड़ता है। 1:30 बजे सोते हैं फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं, और उसके बाद भी हमें पूरा दिन, मतलब आप समझिए शाम को 8:30 बजे मैं हॉस्पिटल से वापस आता हूँ तो सारा दिन काम करते हैं, बीच में रेस्ट नहीं करते हैं, और शाम को 10 बजे भी हम लोग इतना ही फ्रेश होते हैं जितना सुबह फ्रेश थे। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, जो हमारी क्लॉक कहती है उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे अगर आप 4 से 5 जो आधा घंटा मेडिटेशन, क्योंकि आप उठते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 3-4 होती है, डेल्टा रिदम से आप उठते हैं तुरंत आपका परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है, तुरंत आपका कनेक्शन लग जाता है। दिन में 15 फ्रीक्वेंसी आप चाहो तो भी कनेक्शन नहीं लगेगा, एनर्जी आएगी नहीं आपके अंदर। तो वो आधा घंटा मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, आपका पूरे हार्मोन निकल गए बैलेंस में। और 8 बजे तक जो आप पॉजिटिव टीम रखेंगे, अखबार नहीं पढ़िए, टीवी मत देखिए उसमें 8 बजे तक, 8 बजे के बाद टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, जिससे मर्जी बात करिए। मैं देखता था दिल्ली में, मैं 5 हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, मुझे 3 क्लिनिक्स में बैठना पड़ता था, और मैं सारा दिन, जिस दिन मैं मुगली सोने चला जाता 7 से 8, तो मैं सारा दिन फ्रेश फील करता था, एक्टिव फील करता था। लोग दवाई लिखवाने के बाद कहते डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या खाएं, खाने का लोगों को बहुत शौक होता है, तो मैं सोचता लोग क्या, मैं कहता तुम मेरा दिमाग नहीं खाओ बाकी सब कुछ खाओ। उनको बोलता नहीं था क्योंकि अंदर से बोलता था, क्योंकि पेशेंट वेट कर रहे थे, 50 पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, 2 घंटे के अंदर मुझे पूरे करने हैं, नेक्स्ट चैम्बर है मेरा, नेक्स्ट ओपीडी में जाना है, आईपीडी भी देखनी है, इन पेशेंट भी देखने हैं। जिस दिन मैं मुरली सुन जाता 7 से 8, तो उस दिन मेरे को सारा दिन इतना स्लो, इतना इजी लगता था, जो पेशेंट पूछना चाहे जैसे पूछना चाहे बड़ा आराम से मैं इजी महसूस करता था, और पेशेंट भी सेटिस्फाइड महसूस करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सचमुच में स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहते हैं, ये जो 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर का मैं आपको बताया, सुबह 4 से 5 मेडिटेशन, 8 बजे तक चुप रहिए, 7 से 8 मुरली सुन लीजिए, वही पॉजिटिव टीम रखिए, नेगेटिव टीम मत घुसने दीजिए अपने अंदर, 8 बजे के बाद आप एक्टिव हो जाइए, आप वॉकिंग करिए, जो भी करना है आपको, ऑफिस जाइए, अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, जो भी करिए, तो आपकी लाइफ एकदम बैलेंस में रहेगी। खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि जो अंदर चला गया, आपने पराठा पकौड़ा समोसा खा लिया, रास्तिक भोजन खाया, उससे आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। अगर आपने बहुत चाय कॉफी पी ली, अगर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लिया, तामसिक भोजन है, नॉनवेज खा लिया, तो आपके अंदर अपने आप जल्दी चिंता गुस्सा आएगा। तो सात्विक भोजन खाइए, सैर जरूर करिए ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, और सोने के पहले अपने आप को ऑडिट जरूर कर लीजिए। अगर आप ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, तो आपकी लाइफ में इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होगा, 18 घंटा काम करने के बाद भी, 16 घंटा काम करने के बाद भी आपको जरा भी थकावट नहीं होगी, आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। आपके जो डॉक्टर हमारे नेसा मूर्ति जी ने बताया, आप बिल्कुल प्लान कर पाएंगे अपनी लाइफ को, आपकी प्रायोरिटी, आपकी थॉट स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, आपको अपने आप टच होगा, ये काम मैं इस समय कर लूं, आपके आसपास का वातावरण, आपका आसपास के सबऑर्डिनेट्स आपके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे, भगवान भी समझ पाएगा, आपके साथ हमेशा फील होगा भगवान मेरे साथ है, और आप हमेशा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। जैसे हमने बैलेंस के बारे में बात की है, तो अभी तक हम लोग सुन रहे थे, वर्ड्स में इंटरेक्शन हो रहा था। थोड़ा बैलेंस के लिए एक छोटा सा डांस प्रस्तुत होगा, महाराष्ट्र से कुछ कन्याएं एक ग्रुप डांस देंगे। ग्रुप डांस के बाद हम आपका सेशन आएंगे।
नहीं, मैंने बेसिकली आपको एडल्ट्स के लिए बताया, बच्चों के लिए जो बात है, बच्चे तो आठ घंटा सो सकते, दिन में भी सो सकते हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं, बच्चों को नॉर्मली हम थर्ड स्टैंडर्ड से टीच करना शुरू कर देते, तीसरी थर्ड क्लास से, क्योंकि इसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं हम, कि बच्चों को हम तीसरी क्लास से, जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता है तो हम उनको बेसिक सिखाना शुरू कर देते हैं अबाउट दिस 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर, ताकि वो बच्चा फ्यूचर में जाके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज का पेशेंट ना बने। और उसमें धीरे धीरे उसकी टेंडेंसी, हमारे घरों में ये था, अभी जो मैं आपको बताया कोई नई बात नहीं है, हमारे घरों में था, हमारे पेरेंट्स हमें 4 बजे से बोलना शुरू करते, उठो 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 उठो, हम कहते पता नहीं क्यों हमारे सिर खाते हैं, आप पहले उठ गए तो उठ जाओ, पर हमें तंग मत करो। किंतु जब मैंने साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए, ये मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किए, ईईजी किया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की, स्लीप स्टडीज की, तब मैं समझ पाया कि जो बातें हमारे पुराने टाइम ब्रह्म मुहूर्त का समय था वो साइंटिफिक है। लोग सुबह 8 बजे तक चुप, हमारी माताएं क्या करती थी, भजन गाती रहती थी 8 बजे तक, लोग मंदिर जाते थे, मस्जिद गुरुद्वारे जाते थे, 8 बजे तक सिर्फ वही पॉजिटिव थॉट चलता रहता था, नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करते थे। जब से अखबार टीवी आया तब से संसार बदल गया, मोबाइल आया तो उससे बीमारियां बढ़ गई। तो इसको वापस अगर हम नेचुरल कर दें तो हम अपने आप को नेचुरली हेल्दी और हैप्पी हो जाएंगे। और बच्चों को दिन में भी सोने का समय मिलता है, हमको सोने का समय नहीं मिलता है, दिन में स्कूल से आके वो सो सकते हैं, हम लोग नहीं सो पाते। तो बच्चों के लिए 8 घंटा नींद, मैंने फिर बताया, फिर मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप डेल्टा रिदम में रहते हैं और आप थकावट नहीं होगी, कहा जाता ये प्रैक्टिकल वो है, 4 मिनट डेल्टा स्लीप में, अगर डेल्टा रिदम में मेडिटेशन के इतना तो फील कर लो, दैट इक्वल्स टू 4 आवर्स ऑफ स्लीप। 4 घंटा अगर आप डेल्टा स्लीप में, डेल्टा रिदम में चले जाओ मेडिटेशन में, उस एक्सटेसी को फील कर लो, तो आपको 4 घंटा नींद जैसा असर आपकी बॉडी पे आ जाएगा।
थैंक यू, वी विल हैव अ लिटिल बैलेंस इन दिस सेशन, सो डांस ग्रुप इज प्रिपेयर्ड, वी विल हैव अ ब्यूटीफुल डांस फ्रॉम महाराष्ट्र।
मन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा,
आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, सांझ सखरे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे।
Thank you very much. Thank you. Now we are just at the final end of this session, and next session is also very inspiring about founding father Brahma Baba, Pitashri Brahma Baba, जो कि life में balance को कैसे लाए थे और इस institution को कैसे from the very scratch he started the beautiful example of a big leader. Great leader who has inspired millions of people. So, abhi is panel discussion mein, I'm extremely thankful to you all panelists for giving so much of time and inspiring the audience with your beautiful insights. Thank you very much, and thank you my dear audience for giving such a beautiful time and sharing and learning. Thank you very much.